ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। दशप्रायसुभद्रेषु नित्यं भागवत्सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवतम स्कंदार्थ अध्याय 3 और श्लोक संख्या 3। सोऽन्तः सरसीरुबलेन घृतार्तो दृष्ट्वा गरुत्मती हरिं खगोपातचक्रम् उक्षिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृष्णान् नारायणाखिलगुरुभगवन्नमस्ते। सः वह गजेंद्र अंतः सरसी जल में उरुबलेन बलपूर्वक रिहीतः जो घड़ियाल द्वारा पकड़ा गया था, पार्थः तथा अत्यंत पीड़ित देखकर गुरुत्मति गरुड़ की पीठ पर हरि भगवान को खे आकाश में उपाद चक्रम अपना चक्र घुमाते उत्क्षिप्य उठाकर स अम्बुज करम कमल का फूल लिए अपनी सूंड को गिरमाह शब्द कहे कृष्णात् कठिनाई से नारायण हे भगवान नारायण अखिल गुरु हे विश्व के स्वामी भगवान हे भगवान नमः ते मैं नमस्कार करता हूं। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। घड़ियाल ने गजेंद्र को जल में बलपूर्वक पकड़ रखा था जिससे वह अत्यधिक पीड़ा का अनुभव कर रहा था, किंतु जब उसे देखा कि नारायण अपना चक्र घुमाते हुए गरुड़ की पीठ पर बैठकर आकाश में आ रहे हैं तो उसने तुरंत ही अपनी सूंड में कमल का एक फूल ले लिया और अपनी वेदना के कारण अत्यंत कठिनाई से निम्नलिखित शब्द कहे हे भगवान नारायण हे ब्रह्मांड के स्वामी हे परमेश्वर मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। तात्पर्य गजेंद्र भगवान का दर्शन पाने के लिए इतना इच्छुक था कि जब उसने भगवान को आकाश में आते देखा तो उसे अत्यंत पीड़ा से तथा मंद स्वर में भगवान को नमस्कार किया। भक्त भयावह स्थिति को भी भयानक नहीं मानता क्योंकि ऐसी संकटपूर्ण स्थिति में वह अत्यंत आनंद से भगवान से प्रार्थना कर सकता है। इस प्रकार भक्त संकट को एक शुभ अवसर मानता है। तत्तेनुकंपां सुसमिक्षमानो जब भक्त विकट संकट में होता है तो वह इस संकट को भगवान की महती कृपा मानता है क्योंकि यह संकट निष्ठापूर्वक तथा एकाग्रचित से भगवान का चिंतन करने का अवसर प्रदान करता है। तत्तेनुकंपां सुसमिक्षमानो भुंजानम एवात्मकृतम विपाकम भागवत 10:14-8। वह भगवान पर दोषारोपण नहीं करता कि उनके कारण भक्त ऐसी संकटपूर्ण स्थिति में फंस गया है, प्रत्युत वह अपनी संकटपूर्ण स्थिति को अपने विगत दुष्कर्मों का फल मानता है और इस अवसर को भगवान की प्रार्थना करने का सुयोग समझता है और भगवान को धन्यवाद देता है कि उसे ऐसा अवसर मिला। जब भक्त इस प्रकार रहता है तो उसकी मुक्ति भगवत धाम पुनरागमन सुनिश्चित रहती है। हम इसकी सत्यता गजेंद्र के उदाहरण से समझ सकते हैं क्योंकि उसने अत्यंत आतुरता से भगवान की प्रार्थना की और इस तरह उसे तुरंत भगवत धाम लौटने का अवसर प्राप्त हो गया। तत्पश्चात गजेंद्र को ऐसी पीड़ित अवस्था में देखकर अजन्मा भगवान हरि तुरंत अहित की कृपा वर्ष गरुड़ के पीठ से नीचे उतरे और गजेंद्र को घड़ियाल समेत जल के बाहर खींच लिया। तब समस्त देवताओं की उपस्थिति में जो सारा दृश्य देख रहे थे, भगवान ने अपने चक्र से घड़ियाल के मुख को उसके शरीर से पृथक कर दिया। इस प्रकार उन्होंने गजेंद्र को बचा लिया। हरि बोल। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजना शलाकाय वांछा कल्पतरु कृपा सिंधुभ्य पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे तो यहां पे गजेंद्र बहुत ही भयावह अवस्था में है। लगभग 1000 साल के लिए युद्ध चलता रहा मगरमच्छ और हाथी के बीच में। हाथी जल के बाहर बहुत शक्तिशाली होता है, लेकिन जल के भीतर उसकी शक्ति क्षीण होने लगती है। और विशेष रूप से यहां पर जो मगरमच्छ ने गजेंद्र के पांव को पकड़ लिया है, तो गजेंद्र की शक्ति जो है क्षीण होती गई। गजेंद्र वहां पे पिकनिक बनाने आए थे अपने परिवार के साथ, लेकिन मगरमच्छ रूपी माया ने ऐसा पकड़ा कि बस युद्ध शुरू हो गया। बहुत लंबा युद्ध चलता रहा। ऐसा लगता है किसी और मन्वंतर या किसी और युग की कथा है जिसमें इतनी लंबी आयु थी हाथी की और मगरमच्छ की कि 1000 साल तक दोनों बड़े घमासान युद्ध कर रहे थे जल के भीतर ही। और देखने में तो ऐसा ही प्रतीत हो रहा था कि किसकी विजय होगी, मगरमच्छ की विजय होगी, ऐसा देखने में प्रतीत हो रहा था। तो यही है भक्त के ऊपर कृपा भगवान की। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। उसने बता रहे थे कि श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति है मामेकं शरणं व्रज। सभी धर्मों को त्यागना तो बहुत बड़ी बात नहीं है, वो कोई भी त्याग सकता है। मायावादी भी धर्मों को त्यागते हैं और अपना ही मायावाद सिद्धांत दर्शन प्रस्तुत करते हैं, तो वो भी सभी धर्मों को त्यागते हैं। लेकिन जो दूसरा लाइन है इसमें माम एकम शरण व्रज, उसको वो स्वीकार नहीं करते हैं, यानी कि भगवान कृष्ण की शरण में नहीं जाते हैं। लेकिन गजेंद्र यहां पे शरणागत हो रहे हैं, पूर्ण रूपे भगवान के शरण में जा रहे हैं। माम एकम शरण व्रज, तो भगवान क्या करेंगे फिर, इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम होगा आम तो आम सर्व पापे भ्यो मोक्षामी मा शुचः, मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। हर तरह के पाप, कई तरह के पाप वर्णित है हमारे शास्त्रों में, तो इस सभी पापों से, हर तरह के पापों से भगवान मुक्त कर देते हैं। और पापों के अलग अलग स्तर हैं, उससे भी हमें मुक्त कर देते हैं। श्रील रूप गोस्वामी जिस तरह से बता रहे हैं भक्ति रसाम सिंधु में, कूट बीज अप्रारंभ प्रारंभ, ये जो स्टेजेस हैं पाप के, ये सारे के सारे क्या हो जाते हैं, जड़ से उखड़ जाते हैं। प्रारंभ भी नष्ट हो जाता है, ये भक्ति का प्रभाव है। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम, तो शरणागति का ये प्रभाव होता है। शरणागति भगवान हमसे आशा करते हैं कि हम शरणागत हो। जब तक शरणागत नहीं होंगे तब तक प्रारंभ नष्ट नहीं होगा। हो सकता है कि और जो स्टेजेस है वो समाप्त हो जाए, जैसे कूट है, बीज है, नहीं अप्रारब्ध है, ये सब नष्ट हो जाएगा। ये प्रारब्ध जो है, जो आपके डेस्टिनी में भाग्य में लिखा गया है कि होना ही है या हो रहा है आपके साथ, उसको काटना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि प्रारब्ध में क्या है, आपके छुपे हुए संस्कार है। संस्कार यानी पाप का बीज। जो संस्कार है वो बहुत ही गहरे होते हैं, हमारी चेतना में इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है, डीप इंप्रेशन होता है उसका। और ये संस्कार कब जग जाएंगे हमें पता नहीं। जैसे कि आप एक बर्तन में जल रखते हैं और जल जब गर्म करते हैं, नीचे से अग्नि की लपटें निकलती हैं, और इस तरह से अग्नि को जब तेज किया जाता है तो फिर लपटों से क्या होता है, आग की लपटों से क्या होता है, पानी गर्म होने लगता है और उसमें से क्या निकलता है, भाप निकलता है। तो ये है वासना, ये है संस्कार, ये संस्कार निकलते हैं और उस संस्कार हमें मजबूर कर देते हैं पाप या पुण्य कर्म करने में। तो इन संस्कारों को नष्ट करना बहुत कठिन कार्य है, आसान नहीं और बहुत समय लगता है, और काफी समय के बाद, बहुत अधिक प्रयास के बाद जब कोई गुरु की शरण में जाकर दीक्षा ग्रहण करता है और समर्पित भाव से सेवा करता है तो धीरे धीरे उसके प्राणांत भी नष्ट होने लगते हैं। और जब तक प्राणांत नष्ट नहीं होंगे दृढ़तापूर्वक हम भजन नहीं कर सकते। और यही भगवत गीता भगवान बता रहे हैं, ये शांत अंतगतम पापां जरानाम पुण्य कर्मणां सद्वंद मोह निर्मुक्ता भजन के बाद दृढ़ व्रता। तो दृढ़ व्रता यानी दृढ़ व्रत होकर भजन कब कर पाएंगे, जब हमारे संस्कार भी नष्ट हो जाएंगे। इन संस्कारों को नष्ट करने में बहुत समय लगता है, पाप का बीज जिसको कहा जाता है, और जब तक ये ना हो जाए तब तक हमें नाना प्रकार के कष्ट सहने पड़ते हैं, अनर्थों का सामना करना पड़ता है। तरह तरह के अनर्थों का वर्णन किया है श्री विश्वनाथ जी ठाकुर ने, अपराध उत्थान अर्था, भक्ति उत्थान अर्था, है ना, दुष्कृत उत्थान अर्था, सुकृत उत्थान अर्था, तरह तरह के अनर्थ है। तो विश्वनाथ जी ठाकुर कहते हैं कि निष्ठा की अवस्था में हमारे जो दुष्कृत उत्तर अनर्थ है और जो सुकृत उत्तर अनर्थ है, यानी कि पाप के द्वारा उत्पन्न हुए अनर्थ और पुण्य के द्वारा उत्पन्न हुए अनर्थ, ये नष्ट हो जाते हैं कब, निष्ठा के स्टेज पे जाकर। और जब ये दुष्कृत उत्तर अनर्थ और सुकृत उत्तर अनर्थ हमारे जड़ से खत्म हो जाते हैं तो गुरु की कृपा से, भक्तों की कृपा से हमारी रुचि आ जाती है नाम में, जिसको रुचि का स्टेज कहते हैं, तब जाके हम लोग शुद्ध नाम का उच्चारण कर पाते हैं। तो ये और जाके तब जाके हम शुद्ध भक्ति कर पाते हैं। और ये श्री रूप गोस्वामी बता रहे हैं भक्ति साहब सुन दो, अनुकूल कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा अन्याविलासिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम। अनावृत जब तक आवरण होगा ज्ञान और कर्म का, जब तक आवरण होगा दुष्कृत और सुकृत अनर्थों का आवरण होगा, तब तक हम लोग निष्ठा के सर्वन नहीं पहुंच सकते। तो ये लेकिन सारे अनर्थों का निवारण नहीं है, ये केवल दो अनर्थों का निवारण कब होता है, निष्ठा के स्तर पर हो जाता है, निष्ठा या रुचि के स्तर पर कह सकते हैं। तो एक अनर्थ और बताया गया है विश्वनाथ जी ठाकुर के द्वारा, ये सब माधुरी कादंबरी ग्रंथ में बता रहे हैं। एक अनर्थ और बताया है विश्वनाथ जी ठाकुर ने, उसको कहते हैं भक्ति उत अनर्थ, भक्ति में आने के बाद उत्पन्न हुए अनर्थ। भक्ति में आने के बाद उत्पन्न हुए अनर्थ यानी कि कैसा मतलब है कि भक्ति जब करते हैं तो स्वाभाविक है कि हमें यश मिलेगा, हम नहीं भी चाहे तो यश मिलेगा, भगवान आपका यशोगान करेंगे, आप भगवान का गुणगान करेंगे, भगवान आपका गुणगान करेंगे। तो उस यश जब प्राप्त होता है, उस यश को जब स्वीकार कर लेते हैं, उस यश को ही हम लोग भक्ति बांधने लगते हैं शुद्ध भक्ति, तो यानी कि लाभ पूजा प्रतिष्ठा बड़ा आनंद आता है, इस सुख में बड़ा ही सुख मिलता है। नहीं, भक्ति उत्पन्न, भक्ति से उत्पन्न हुआ अनर्थ, तो ये अनर्थ उत्पन्न करते हैं, अनर्थ उत्पन्न करते हैं। अनर्थ क्या है, कंचन कामनी प्रतिष्ठा भागनी, तो इस प्रकार से अनर्थ बढ़ते जाते हैं। जब इसको स्वीकार कर लेते हैं सुख को, तो अनर्थ बढ़ते हैं। लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए हमारा जो रुझान है, हमारा लालसा जो है बढ़ती रहती है, तो ये अनर्थ उत्पन्न होते हैं, भक्ति उत अनर्थ। तो जब ये विश्वनाथ जी ठाकुर कहते हैं जब रुचि के स्तर पर पहुंचते हैं तब जाके शत प्रतिशत इसे छुटकारा मिलता है। यानी जब तक नाम में रुचि नहीं है तब तक हमारे अपने नाम में रुचि होगी हमारी। श्री चैतन्य महाप्रभु ने शिक्षाष्टकम के तीसरे श्लोक में बताया है, ना धर्म ना जन्म ना सुंदरी कविता म जगदीश कामये मम जन्मनी जन्मनीश्वरे भवता भक्ति रहित की तोई। जन्म जन्मांतर तक मैं आपकी हृदय की भक्ति चाहता हूं, मुझे धन नहीं चाहिए, जन नहीं चाहिए, अनुयायी नहीं चाहिए, ये सब नहीं चाहिए मुझे, लेकिन अगर नाम में रुचि नहीं होगी ये सब चाहिए मुझे। भक्ति करते हुए हमें ये सब चाहिए, जन्म देही धर्म देही सब चाहिए, कर्म मिश्रित भक्ति जिसको कहते। तो इसलिए जब तक हम रुचि के स्तर पर नहीं पहुंच जाते हैं तब तक ये समस्या बनी रहे। अब गजेंद्र देखिए, हालांकि हाथी के रूप में है लेकिन क्योंकि पिछले जन्म में महाराज इंद्रदुम्न के रूप में गंधर्व वो एक राजा थे दक्षिण भारत के, और उस शरीर में उन्होंने भक्ति की थी, भगवान से बहुत सारे प्रार्थनाएं की थी। और गजेंद्र यहां पर देखिए शुद्ध भक्ति का भाव प्रकट कर रहे, शरणागत हो गए हैं। हालांकि गजेंद्र जो है प्रारंभ में वो भी कर्म की शुद्ध भक्ति में थे, जैसे कि बताया गया भगवत गीता में चतुर्विदा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुना आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षवा। तो उसमें क्या बता रहे भगवान, दुखी होकर गजेंद्र ने पुकारा, कष्ट में पुकारा भगवान को, राइट। लेकिन कष्ट में पुकारने से क्या हुआ, प्रारंभ में तो वो कर्म मिश्रित में थे, अवस्था में थे, लेकिन बाद में जब भगवान का दर्शन जब प्राप्त हो गया, उस कारण से उस कष्ट से भगवान को पुकारने से क्या हो गया, वो शुद्ध भक्ति के धरातल पर पहुंच गए। इसी तरह से सौनक ऋषि के बारे में बताया जाता है, इसी तरह से चार कुमारों के बारे में बताया जाता है, इसी तरह से ध्रुव महाराज के बारे में बताया जाता है। यानी भगवान के संपर्क में आकर ये सब शुद्ध हो गए और ये सब क्या बन गए, शुद्ध भक्त बन गए। तो प्रारंभ में हम सब अनर्थ लेके आते हैं, हम लोग बहुत कुछ छोड़कर आते हैं, लेकिन यहां एक चीज लेकर आते हैं, क्या, अपने साथ अनर्थ। और ये जो है, ये जो संपत्ति है अनर्थों की, ये बहुत विशाल है। ते तम भुक्त्वा स्वर्गलोक विशालम, बोलते हैं ना भगवत गीता व्यवहार की, वह स्वर्गलोक में विशाल सुख है। इसी तरह से हमारे अनर्थ भी बड़े विशाल है। और अनर्थों को लेकर हम लोग क्या करते हैं, संस्था में ज्वाइन करते, भक्तों के समाज में आते हैं, सब कुछ छोड़ दिया, घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, है ना, अपने वस्त्र भी छोड़ दिए, नए वस्त्र पहन लिए, तिलक धारण कर लिया, केश भी मुंडित कर लिया, सब कुछ कर लिया हमने, लेकिन हमने अनर्थों को नहीं छोड़ा, अनर्थों के साथ हम यहां पर आते हैं। तो इसलिए क्या होता है, समस्या ही समस्या है, डिफिकल्टीज है, कष्ट है। यही तत्वात्पर्य में इसलिए प्रभुपाद जी चर्चा कर रहे हैं कि हमें इन कष्टों से गुजरना पड़ता है। क्यों, क्योंकि हमने कष्ट जो है स्वयं पाल के रखे हैं। ये समस्या हमारी स्वयं अपनी ही समस्या है, बाहर वाले की समस्या नहीं है। मन ही हमारे बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। तो हमारी चेतना में इतने सारे अनर्थ भरे पड़े हैं, इसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। प्रभुपाद जी कहते हैं हमारा मन जो है कोयले से भी ज्यादा काला है। कोयला अगर आप धोते हैं साबुन से तो साबुन काला हो जाएगा, लेकिन कोयला कभी सफेद नहीं होगा, राइट। लेकिन फिर आप प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, हमारा मन जो है कोयले से ज्यादा काला है, तो सोच के देखिए आप क्या हालत है हमारी। तो इसलिए, लेकिन याद रखिए कोयले के खान में हीरा निकलता है। हीरा कहां से निकलता जानते हैं, कोयले के खान में मिलता है। इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर हमारा मन कोयले से भी ज्यादा काला है तो फिर भी होप है, आशा है। तो इस तरह से भक्त जो है आते हैं और कई प्रकार के कष्टों से गुजरना पड़ता है। कई प्रकार के कष्ट है, शारीरिक कष्ट है, मानसिक कष्ट है, पड़ोसियों से कष्ट है और भक्तों से भी कष्ट है। नहीं, कोई ना कोई भक्त जो है हमारे आड़े आ रहा है, कोई ना कोई भक्त हमारी बुराई कर रहा है, या कोई ना कोई भक्त जो है अधिक से अधिक जरूर से ज्यादा प्रशंसा हमारी कर रहा है, और हम जानते हैं कि हम इसके योग्य नहीं है, फिर भी हमारी प्रशंसा कर रहा है, तो यह भी समस्या है। इसलिए देखिए, इसलिए भगवद गीता में भगवान कह रहे हैं कि वो भक्त मुझे प्रिय है जो मान और अपमान दोनों का सहन करता है। तो हमने जब पढ़ा था ये श्लोक, हमने सोचा ठीक है यार, अपमान तो ठीक है, लेकिन ये मान का समझ में नहीं आ रहा। अब समझ में आ रहा धीरे धीरे कि मान को भी आपको सहन करना पड़ेगा। जब आप भक्तों के समाज में आएंगे तो अपमान तो समझ सकते हैं, चलो कोई अपमानित करता है तो सहन करना पड़ेगा, लेकिन मान को सहन करने का मतलब क्या है ये समझ में नहीं आ रहा फिर। लेकिन जैसे जैसे अनुभव बढ़ता गया और हमने देखा कि मान को सहन करना ज्यादा मुश्किल है अपमान से, क्योंकि अपमान जब सहन करते हैं तो उस समय हम हृदय से प्रार्थना करते हैं भगवान से, हे कृष्ण मेरी रक्षा करिए ताकि मैं अपमान को सहन कर पाऊं। लेकिन जब मान मिलता है तब तो कृष्ण याद नहीं आते हैं, क्योंकि स्वयं ही कुछ समय में अपने आप को भगवान मान बैठते हैं। तो हम बताइए कौन सा ज्यादा जो है ज्यादा डिफिकल्ट है सहन करना, मान को सहन करना ज्यादा मुश्किल है। कष्ट में तो भगवान याद आते हैं, कुंती महाराज इसलिए कह रहे हैं, विपदा संतुता शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भव दर्शनम ज्ञान अपुनर्भव दर्शनम, कष्ट जवाब हम देंगे हमें हे कृष्ण क्या होगा, हम आपका स्मरण करेंगे, आपका स्मरण करेंगे तो भवसागर का दर्शन नहीं होगा, कुंती महारानी कह रही है। तो भक्त जो है कष्ट क्यों मांगता है, इसका कारण क्या है? कारण यह है कि उस कष्ट की अवस्था में वो भगवान को याद कर पाता है। भगवान को याद करना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, भगवान का चिंतन करना बहुत बड़ी उपलब्धि है। गले में भले प्राकृत अवस्था में कष्ट की अवस्था में भगवान को पुकार रहा हो, लेकिन पुकारा तो उसने भगवान को ही ना। इसलिए भगवान कह रहे हैं ये सब सुकृतिना जीव है, क्योंकि ये सब कुछ भी हो, कितनी भी कमियां क्यों ना हो, ये किसको याद कर रहे हैं? ये मुझे याद कर रहे हैं। अकाम सर्व काम वा मोक्ष काम उदार भी तीव्रेण भक्ति योगे ने यजेत पुरुषम परम। तो कामनाएं हो या ना हो, मुक्ति की इच्छा हो, कुछ भी हो, हमें किसके पास आना चाहिए? कृष्ण के पास आना चाहिए। क्योंकि भक्तों में योग्यता क्या है, सबसे बड़ी योग्यता क्या है? कि वो सब कृष्ण के भक्त है। ये सबसे बड़ी योग्यता है आप सब भक्तों की, कि आप कृष्ण भक्त हैं, और कोई भी समस्या है, कोई भी कष्ट है, तो आप किसके पास आएंगे? कृष्ण के पास आएंगे। अगर बच्चा भूखा है, बच्चा छोटा सा रो रहा है, असहाय अवस्था में है, तो किसके पास जाएगा? पड़ोसी के पास जाएगा? नहीं, वो अपनी मां के पास जाएगा। तो इसी तरह से जो भक्त है वो जब कष्ट में होता है तो किसके पास जाएगा? कृष्ण के पास ही जाएगा। और कृष्ण जो है उस भक्त को इतना शुद्ध करते हैं अंदर से, है ना, इतना निर्मल बना देते हैं, बस फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो कष्ट कष्ट नहीं लगता है, कष्ट को बड़ी आसानी से झेल पाता है भक्त। तो ये अनर्थ के बारे में चर्चा कर रहे थे। एक अनर्थ और बताया है विश्वनाथ जी ठाकुर ने, अपराध उत्थ अनर्थ। और ये भक्ति उत्थ अनर्थ से क्या होता है, अपराध भी होने शुरू हो जाते हैं। कई तरह के अपराध हम लोग करते हैं, नाम अपराध करते हैं, सेवा अपराध करते हैं, वैश्य अपराध करते हैं, अपराध में एक्सपर्ट बन जाते हैं हम लोग। तत्रापि दाक्षा अतिवल्लभस्य, बहुत एक्सपर्ट बन जाते हैं अपराध करने में, और ये अपराध बहुत लंबा चलता है। अपराध के द्वारा जो उत्पन्न हुए अनर्थ है वो बहुत लंबा चलता है। विश्वनाथ जी ठाकुर कहते हैं अर्थ है और सुकृत उत अनर्थ है, वो तो निष्ठा के सर्व समाप्त हो जाता है, लेकिन जो अपराध उत अनर्थ है वो बहुत लंबा चलता है, केवल 75% ही करता है निष्ठा के स्तर पर। अपराध से उत्पन्न हुए अनर्थ निष्ठा के स्तर पर भी केवल 75% ही करता है। तो लेकिन उसके बाद और फिर भाव की अवस्था में बताते हैं अपराध से उत्पन्न हुआ जो अनर्थ है वो करता है 95%। भगवत प्रेम जब प्राप्त हो जाता है 100% कट जाता है। और उसके बाद एक और स्टेज बताया विश्वनाथ जी ठाकुर ने, आत्यंत की, यानी दोबारा वापस अनुस अनर्थ के आने की संभावना जड़ से खत्म हो जाती है जब भक्त जो है भगवान की नित्य लीला में प्रवेश कर जाता है। यानी कि खतरा कितना है इस अनर्थ से, अपराध से उत्पन्न हुआ अनर्थ जो है सबसे खतरनाक है। इसलिए भक्ति सिद्धांत से ठाकुर कहते हैं कि जो अपराध है वो लाखों गुना खतरनाक है पाप से, क्योंकि पाप के से उत्पन्न हुआ अनर्थ तो उसका जो संस्कार है, पाप या पुण्य के जो संस्कार है वो तो निष्ठा के सर पर समाप्त हो जाए, लेकिन अपराध से उत्पन्न हुआ जो अनर्थ है उसके जो संस्कार है वो बहुत आगे जाके कटता है, कम से कम भाव की अवस्था में। भाव की अवस्था में अनर्थ का मतलब ये होता है, 95% का मतलब है, जैसे कि मान लीजिए एक कमरे में अब रजनीगंधा रखते हैं, रजनीगंधा का फूल, और रजनीगंधा का फूल रखने के बाद पूरी रात रखने के बाद आप सुबह सुबह क्या करते हैं, दूसरे कमरे में ले जाते हैं, क्योंकि अगले दिन जन्माष्टमी का फेस्टिवल है, तो आपने एक कमरे में रखा हुआ था फूल, और सुबह सुबह उठ के आप 4-4:30 बजे, क्योंकि आपको ऑर्डर कर डेकोरेशन वगैरह करना है टेम्पल हॉल का, तो आप उसको टेम्पल के ऑर्डर के बहुत नजदीक लेके चले आते हैं, तो जहां वो रखा हुआ था पूरी रात उस कमरे में अभी भी खुशबू रहती है, रजनीगंधा की खुशबू रहती है। तो इसी तरह से भाव की अवस्था में ये अनर्थों का आभास रहता है, इसलिए 95% कहा गया। या फिर इसी किसी कमरे में आप समझ लीजिए गटर का पानी रख दें, या गंदगी जितना कूड़ा कूड़ा है गटर का सारा गंद रख दें एक कमरे में, राइट, उसमें स्टूल भी है, यूरिन भी है, सब कुछ है उसमें, और उसके बाद आप उसको वहां से हटा दें, हटाने के बाद जब तक आप पूरी तरह से जड़ से सफाई नहीं करेंगे तब तक उसका गंद वहां पर रहेगा, रहता कि नहीं रहता है? तो इसको कहते हैं अनर्थाभास। तो इस तरह से अपराध से उत्पन्न हुए अनर्थ है ये बहुत बहुत देर से जाके करते हैं, और इतना इसलिए भक्तों को संघर्ष करना पड़ता है, इतने सारे कष्टों से गुजरना पड़ता है और भगवान देख रहे हैं कि भक्त कितना सहन कर रहा है। मात्रा स्पर्शास्त्र को तेतोष ने सुख दुखदा आगाम उपाय नित्यास्ताम प्रतिक्ष भारत। इसलिए भगवान कह रहे हैं सहन करना सीखो। सहन करने का मतलब क्या होता है ये भी समझिए आप। सहन करने का मतलब होता है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है। सहन करने का मतलब क्या है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। यानी कि आपको निर्भर रहना पड़ेगा कृष्ण के ऊपर। यानी आपके सामने कोई अपना शरीर छोड़ रहा है तो सहन करना ही पड़ेगा आपको। क्या कर सकते हैं आप बताइए। कोई जन्म ले रहा है, कोई किसी की मृत्यु हो रही है, किसी को बीमारी लग रही है, तो आप क्या कर सकते हैं उसको। सहन करना पड़ेगा। कुछ कर सकते हैं उपाय, लेकिन उसको तो कष्ट से गुजरना ही पड़ेगा। इसलिए सहन करना पड़ेगा क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते उसको। आपके पास सॉल्यूशन नहीं है। एक ही सॉल्यूशन है और वो क्या है, भक्ति, भगवान की सेवा। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजम। और कोई सॉल्यूशन नहीं है। भौतिक समस्या का भौतिक हल नहीं मिल सकता है संसार में। इसलिए लोग भी तरह तरह के कष्ट पा रहे हैं संसार में। आप जाके देखिए, है ना, लोग बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं, कितना कष्ट झेलना पड़ता है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। आज को जाता है नौकरी में, जाता है सुबह सुबह निकलता है, 7:30-8 बजे लोग निकल जाते हैं और रात को कब आते हैं वापस, 8-9 बजे घर वापस आते हैं, कई बार 10 भी बज जाते हैं। कई लोगों की नाइट शिफ्ट होती है कॉल सेंटर्स में, पूरी रात काम करते हैं, हेल्थ उनका खराब हो जाता है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, राइट। उसके बाद गलती से वो शादी कर ले तो और समस्या। गलती की है या ना की हो, समस्या तो रहेगी। तो इसलिए श्री प्रभुपाद पिछले अध्याय के तात्पर्य में बता रहे हैं कि अगर ब्रह्मचारी होकर हम युद्ध नहीं कर सकते हैं तो कम से कम गृहस्थ आश्रम में तो युद्ध को बंद ना करें, उस युद्ध को जारी रखें। कौन सा युद्ध? यही युद्ध, हाथी और मगरमच्छ का युद्ध, गजेंद्र और मगरमच्छ का जो युद्ध है, इस तरह का युद्ध जो है वह जारी रखना है। और मगरमच्छ रूपी माया के साथ हम युद्ध करते रहना है, भले हम किसी भी आश्रम में। उस युद्ध से भागना नहीं है, युद्ध भूमि छोड़ के भागना नहीं है। भले हम पहुंच गए परिवार में, गृहस्थ आश्रम में चले गए हैं, तो वहां युद्ध और घमासान है क्योंकि आपके साथ बहुत सारे शत्रु हैं, आपके अपने ही निज जल, आपके अपने ही सगे संबंधी आपके क्या है, मित्र है नहीं, शत्रु है। उनके साथ युद्ध करना बहुत बड़ा कष्ट है, बहुत समस्या है। परमचारी तो आपस में थोड़ा झगड़ा करके फिर से आपस में फिर से मित्रता हो जाती है, जहां फीस पेशान आता है फिर मित्रता हो जाती है सब। लेकिन परिवार में रहते हुए, गृह आश्रम में रहते हुए बहुत सारी समस्या है। घर चलाना है, परिवार चलाना है, किसी को ऑफिस जाना है, कितना प्रेशर है, चारों तरफ से प्रेशर ही प्रेशर है नहीं। और उस प्रेशर में आपको युद्ध करते रहना। युद्ध क्या है, यानी कि जो भक्ति का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करते रहना, उस प्रोसेस को छोड़ना नहीं है। किसी भी जगह हो आप, उस मगरमच्छ रूपी माया के साथ आपको युद्ध करते रहना है, करते रहना है। इसे श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को कह रहे हैं, यस्याहम अनुग्रामी हरिष्ये तद धनम शनै ततो धनम त्यजन्ति अस्य स्वजना दुख दुखितम। भगवान कहते हैं मैं जिसके ऊपर विशेष कृपा करता हूं तो क्या करता हूं, धीरे 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 मैं सब कुछ उसका छीन लेता हूं। बहुत कुछ मिलता है हमें संसार में, अपने प्रारब्ध के अनुसार, अपने भाग्य के अनुसार बहुत कुछ मिलता है। जन्म ऐश्वर्य सुतर श्री भी एदमान मदपुमान। कुंती महारानी कह रहे हैं अच्छे कुल में जन्म होता है आपका, सुंदरता मिलती है, धन मिलता है, विद्वत्ता मिलती है। कुंती महारानी कहती है यह सब क्या है, बाधा है, इंटॉक्सिकेशन है, जड़ विद्या माया वैभव। बहुत अधिक विद्वत्ता होती है, बहुत अधिक भौतिक ज्ञान करने प्राप्त करने से क्या होता है, लगता है ये गीता है, श्रीमद् भागवत, यह सब कल्पना है, राइट। हमें लगता है कि जब हमने जो पढ़ा है वही सही है। उस दिन डॉक्टर्स के साथ प्रेजेंटेशन दे रहे थे, जब हमने वेरी कॉस्मोलॉजी उनको दिखाया तो उनको बिल्कुल कल्पना लग रहा था, मतलब इमेजिनेशन लग रहा था उनको। तो उन्होंने इतना इंटरेस्ट नहीं दिखाया शुरू शुरू में, जब प्रेजेंटेशन दिया हमने, उन्होंने कहा कि यह सब थोड़ा इमेजिनेशन लग रहा है, वेरी कॉस्मोलॉजी और वेरी प्लानिटोरियम। तो लोग विश्वास नहीं करते हैं क्योंकि हमारा वातावरण ही ऐसा हो गया समाज का कि बचपन से हमें भौतिक ज्ञान ही दिया जा रहा है और विश्वास दिलाया जा रहा है कि यह संसार सच है, यह भौतिक ज्ञान सच है, आप सच हो, आपका परिवार सच है, पूरा जो संसार है वो जड़ विद्या के ऊपर आधारित है। तो आपकी गीता की बात कौन स्वीकार करेगा, कौन मानेगा रामायण हुआ था, रामलीला हुई थी नहीं, आज हाईकोर्ट के जज ही बोल रहे हैं ये रामायण जो है सब कल्पना है, राम राम के कोई व्यक्ति नहीं थी। एक हाईकोर्ट के जज ने बताया, बेंच से बैठ के उसने कोर्ट में बताया ये बात। कितने दुर्भाग्य की बात है, देखिए देश के जो नेता और अभिनेता और यहां के जो न्यायाधीश है वो इस प्रकार की सूचना दे रहे समाज तो नाना प्रकार के कष्ट है समाज में, और हमारे अपने भाग्य के अनुसार हमें बहुत कुछ मिल जाता है। जन्म ऐश्वर्य श्रुति श्री भीर, अच्छे कुल में जन्म होना, विद्वत्ता प्राप्त होना, बहुत धन प्राप्त होना, सुंदरता प्राप्त होना, यह सब भक्ति में बहुत बड़ी बाधा है। क्यों? इसे देहात्मक बुद्धि हमारी बढ़ती है। तो भगवान देखते हैं इस भक्त के बाद बहुत कुछ जरूरत से ज्यादा आ गया है, इसके बाद बहुत धन आ गया है, अब यह मंदिर आना कम हो गया है, राइट? विद्वत्ता बहुत प्राप्त हो गई है, यह सोचता है कि यह सब भक्त मूर्ख है। बहुत सुंदर है, नेता बनना चाहता, अभिनेता बनना चाहता है, मूवी स्टार बनना चाहता है, मॉडल बनना चाहता है, राइट? अच्छे कुल में जन्म हुआ है, ये सब शूद्रों का काम है, टॉयलेट साफ करना, बाथरूम साफ करना। मैं तो ब्राह्मण परिवार में मेरा जन्म हुआ है, हमें यहां प्रवचन देने के लिए बताइए, हम संस्कृत में पीएचडी की है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से, आप हमें क्या समझाएंगे भगवदगीता? ऐसे कई आए थे हमारे पास भी जिन्होंने पीएचडी किया संस्कृत में, लेकिन कभी वो भक्त नहीं बन पाए, ज्ञान तो उनको हो गया बहुत कुछ। तो ये सब बाधाएं हैं, बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स हैं। तो यहां भगवान युधिष्ठिर महाराज को क्या कर रहे हैं कि मैं जब किसी के ऊपर विशेष कृपा करता हूं तो मैं क्या करता हूं, उसका सारा धन धीरे धीरे छीन लेता हूं। डरिएगा मत, कृष्ण भक्त बनने से लोग डरते हैं, भयभीत होते हैं। अगर आप वैष्णो देवी जाना चाहते हैं घर में तुरंत बोले हाँ हाँ जाओ, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वहां पैसा मिलेगा, वैष्णो देवी के सामने कुछ भी मांगेंगे आपका जेब भरा जाएगा, राइट? वैष्णो देवी जाइए कोई मना नहीं करेगा, किसी भी आप देवी देवता के मंदिर जाइए कोई मना नहीं करेगा, घर में आप वो भी शायद साथ में आपके जाएंगे, हम भी चलेंगे। लेकिन जहां पर हरे कृष्ण मंदिर बोल देते हैं कि आप इस कौन के भक्त बनना चाहते हैं और प्रत्येक रविवार आप जाना चाहते हैं राधिका रमण मंदिर, भक्तों का संग करना चाहते हैं, नहीं नहीं वहां नहीं जाना, वहां जाने से सब कुछ छिन जाता है, वो बाल भी छीन लेते हैं हमारे, वस्त्र भी छीन लेते हैं, सब कुछ छीन लेते हैं, सड़क पे ले आएंगे हमें, घर बार छूट जाएगा। डरते हैं भक्त बनने से लोग, कृष्ण भक्त बनने से बहुत डरते हैं। कृष्ण भक्त बनना एक बहुत ही डरावनी चीज है हम सबके लिए, वेरी वेरी फियर फियर सॉन्ग, बहुत डरावना है ये प्रोसेस, कृष्ण भक्ति का प्रोसेस। धीरे धीरे सब छूट जाएगा, आपके पास कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ आपसे छीन लिया जाएगा, बिना बताए बिना पूछे आपके जेब से निकाल लिया जाएगा, तैयार रहेगा, सारी हंसी खत्म हो जाएगी, आंखों से आंसू आएंगे, रोएंगे आप राधिका रमण जी के सामने आकर, क्या हुआ मेरा हार, सब कुछ छिन गया, शरीर भी छिन गया, बीमारियां लगी हुई है, आखिर में अहंकार भी छिन गया, बदनाम कर दिया कृष्ण ने मुझे, कहीं का ना रहा मैं। ऐसी हालत कर देते हैं ठाकुर जी अगर कृपा करते हैं, राधा रानी की जब कृपा हो जाती है तो बदनाम भी कर देंगे आपको, आखिर में जब कुछ नहीं बचेगा तो द्रौपदी जी की तरह हाथ खड़े कर लेंगे, शरणागत हो जाएंगे आप, जैसे गजेंद्र यार शरणागत होंगे, कुछ नहीं बचा, इसलिए बलि महाराज के ऊपर कृपा नहीं कर रहे थे वामन देव। वामन ने कहा वाह, तुमने जो है दो पग से जो है चारों दिशाओं को, दसों दिशाओं को जो है नाप लिया है, तीसरा पग कहां रखूं मैं? बलि महाराज सोच में पड़ गए, मैंने सबको तो दे दिया, बचा ही है मेरे पास। लेकिन बलि महाराज समझ गए कि हां अभी उनका मस्तक बचा है, अपना ही सर्वस्व, उनका अहंकार बचा है। विश्वनाथ जी ठाकुर कहते हैं इस टीका में, कहते हैं इस बलि महाराज के प्रसंग में विश्वनाथ जी ठाकुर बता रहे हैं कि बलि महाराज ने एक चीज नहीं दी थी, अपना अहंकार नहीं दिया था। उनको अहंकार क्या था कि ये जितना भी दिया है सब मैंने दिया है, मेरा दिया हुआ है। तो बलि महाराज का ये जो अहंकार है ये रह गया था उनके पास। तो भगवान महादेव से कहते हैं कि आप अपने चरण मेरे मस्तक पर रख दीजिए और इस अहंकार को भी ले लीजिए आप। तो जब अहंकार को ले लिया बलि महाराज के भगवान वामन देव ने, तो क्या मिल गई उनको? भगवान की कृपा मिल गई। तो भगवान जो है सब कुछ छीन लेते हैं, और इसलिए भीलमंगल ठाकुर ने बहुत सुंदर अष्टकम लिखा है, चौराग्रगण्य अष्टकम, चौराग्रगण्य पुरुषाष्टकम, जिसमें बता रहे हैं भीलमंगल ठाकुर बता रहे हैं कि कृष्ण जो है कितने बड़े चोर हैं, सब कुछ चुरा लेते हैं, वो माखन चुरा लेते हैं, गोपियों का वस्त्र चुरा लेते हैं, और राधारानी का भाव चुरा लेते हैं, और श्री चैतन्य महाप्रभु बनकर आते हैं, सब कुछ चुरा लेते हैं कृष्ण, कृष्ण भय सबसे बड़े चोर है, सबसे बड़े लंपट है ब्रज में, और क्या होगा आखिर में आपको भी चुरा लेंगे, भक्तों को भी चुरा लेंगे, इन भक्तों को भाव सागर से चुरा लेंगे और अपने लीला में प्रवेश करा देंगे, तो सब कुछ चोरी हो जाएगा आपका, कुछ भी नहीं बचेगा आपके पास, तैयार रहिए आप सब। तो इस तरह यहां पे बाल बताए जा रहे हैं, भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि मैं किसी के ऊपर जब अनुग्रह करता हूं, किसी के ऊपर विशेष कृपा करता हूं, तो धीरे धीरे क्या करता हूं, सब कुछ मैं छीन लेता हूं। एक बहुत अच्छी बात बताई विश्वनाथ ठाकुर ने इस श्लोक के तात्पर्य में, बता रहे हैं कि अगर भक्तों को कष्ट नहीं होगा, भक्त अगर कष्टों से नहीं गुजरेंगे, तो फिर भगवान के आने का उद्देश्य तो पूरा होता ही नहीं। भगवान ने राम के रूप में आए हैं, नरसिंह भगवान के रूप में आए, किसके लिए आए, भक्त के रूप में आए, तो भगवान ये सारी लीलाएं कैसे करेंगे अगर भक्तों को कष्ट नहीं होगा, तो सब कुछ बढ़िया चलेगा, अच्छा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, कष्ट नहीं होगा, तो भगवान को यहां आने की आवश्यकता ही क्यों है। इसलिए भक्त को भगवान जो है अनुभूति कराते हैं, साक्षात्कार कराते हैं, दुखालय वशाश्वतम, ये संसार दुखालय है, ये रहने का स्थान नहीं है, चलो वापस, बहुत रह लिए जेल में। तो इसलिए इन बातों को बड़ा ध्यान से समझना है कि भक्त को भगवान क्यों कष्ट देते हैं। और विश्वनाथ ठाकुर एक बहुत ही अच्छी उपमा दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि रात्रि के समय सूर्य उदय बड़ा अच्छा लगता है, अगर सूर्य उदय हो जाए रात्रि के समय तो बड़ा अच्छा लगे, राइट, और दोपहर के समय जब सूरज की धूप निकलती है तो उस समय चंद्रमा बड़ा अच्छा लगता है, यानी रात्रि का समय बड़ा अच्छा लगता है। सर्दी के समय गर्मी का मौसम बड़ा अच्छा लगता है, गर्मी के समय सर्दी का मौसम अच्छा लगता है, सर्दी के समय गर्म पानी अच्छा लगता है और गर्मी के समय ठंडा पानी बहुत अच्छा लगता है, रात्रि के समय दिया बड़ा अच्छा लगता है, दिन के समय सूर्य के सामने दिया का कोई महत्व नहीं, दिन के समय सूर्य के सामने दिए का कोई महत्व नहीं है, लेकिन रात्रि के समय उसी लैंप का, उस दिए का बड़ा महत्व है। यानी कि जब तक कष्ट नहीं आएगा तो उस सुख का महत्व कैसे समझेंगे हम, उस आनंद का महत्व कैसे समझेंगे। तो विश्वनाथ जी ठाकुर कहते हैं कि इसी बात का साक्षात्कार कराते हैं भगवान हमें भक्तों को, कि भक्ति करते 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 इन बातों का हमें महत्व समझ आने लगता है कि भगवान हमसे क्या चाहते हैं। जैसे कि एक डॉक्टर है, एक बीमारी को ठीक करने के लिए कई बार पेशेंट को बहुत स्ट्रांग इंजेक्शन देता है, और स्ट्रांग इंजेक्शन जब देता है तो उस व्यक्ति को, उस पेशेंट को बहुत पीड़ा होती है, कई बार उसको ऑपरेशन भी करना पड़ता है, फिर भी क्या करता है वो डॉक्टर, क्या करता है उस पेशेंट को ऑपरेट करता है, इंजेक्शन देता है, बहुत ही तेज इंजेक्शन देता है, लेकिन उस पेशेंट के लिए वही इलाज है। क्योंकि आप कह रहे हैं, विश्वनाथ जी ठाकुर कह रहे हैं, जब कष्ट से गुजरने के बाद जब उसको भगवान की कृपा मिलती है, भगवान का दर्शन प्राप्त होता है, नाम में जो रुचि आती है, उस आनंद की कोई सीमा नहीं रहती है, इतना आनंद आता है उस भक्त को कि जितना भी उसने कष्ट पाया वो सब भूल जाता है, सब का सब भूल जाता है। और उसके बाद जब नाम में जब रुचि आ जाती है भक्त को, उसके बाद अगर उसको कष्ट भी मिलता है, प्रारब्ध नष्ट होने के बाद भी कष्ट दिखाई पड़ते हैं। अब पांडवों का कोई प्रारब्ध थोड़ा था, प्रहलाद महाराज को कोई प्रारब्ध थोड़ा था, इन सबको कष्ट क्यों मिला, ये सारा कष्ट भगवान के द्वारा दिया गया। इनफैक्ट विश्वनाथ जी ठाकुर यहां तक कह देते हैं कि प्रारंभिक अवस्था से लेकर कोई महाभाव की अवस्था तक भी पहुंच जाए, हर अवस्था में भगवान ही भक्त को कष्ट दे रहे, भगवान ही भक्तों का कष्ट दे रहे, ऐसा लगता है कि हम अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं, लेकिन यह वास्तव दिया जाता है भगवान के द्वारा। यानी कि धीरे धीरे हमारे कर्म को खत्म करते हैं, यानी जो संस्कार है, कर्म के जो संस्कार है उसको धीरे धीरे भगवान समाप्त करते हैं, तरह प्रकार के कष्ट देकर। एक बहुत सुंदर कथा बताते हैं आपको जगन्नाथपुरी की, पहले भी सुना होगा, फिर से सुन लीजिए जगन्नाथ जी प्रसन्नता के लिए। तो एक जगन्नाथ जी के बहुत बड़े भक्त थे पुरी में, और वो बहुत बीमार थे, बिस्तर में लेटे रहते, और वही बिस्तर में मलमूत्र त्यागते थे, और उनके घर में कोई था भी नहीं, एक नौकर था, लेकिन वो फिर रात्रि के समय रहता नहीं था, सायंकाल के बाद सूर्यास्त के बाद चला जाता था वो, तो घर में प्रैक्टिकली वो अकेले थे, तो बहुत कष्ट में थे वो। जगन्नाथ जी का दर्शन भी नहीं हो पा रहा था, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे, और रोते रहते थे, मलमूत्र त्यागते रहते थे बिस्तर में ही, बहुत पीड़ा में थे। तो रात्रि एक दिन क्या हुआ, सुबह सुबह जब आंखें खुली उनकी तो देखा उनका बिस्तर बिल्कुल साफ, मलमूत्र है ही नहीं, तो उनको शक हुआ कि रात्र को कौन आता है और मलमूत्र साफ करता है, कौन ही कर रहा है। मेरा सेवक जो नौकर है वो तो चला जाता है सूर्यास्त के बाद, रात्रि को आके कौन करता है काम? तो उसने कहा रात को मैं रंगे हाथ पकड़ूंगा। तो रात्रि को सोने का नाटक किया उस भक्त ने, और धीरे धीरे उसको कुछ आवाज आई जैसे कि मैं साफ कर रहा हूं। और उस भक्त ने क्या किया, धीरे धीरे अपना हाथ बढ़ाया और उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लिया और बत्ती जलाई। बत्ती जला के किसका दर्शन प्राप्त हुआ उस भक्त को? जगन्नाथ जी का दर्शन प्राप्त हुआ। साक्षात जगन्नाथ जी आते थे प्रत्येक दिन और अपने भक्त का मलमूत्र साफ करते थे। इससे बड़ी बात क्या होगी कि भगवान अपने भक्तों का मलमूत्र तक साफ करने के लिए तैयार है। तो भक्त ने बोला, जगन्नाथ जी आपसे एक प्रश्न है, बुरा मत मानेगा, आप रोज आ रहे हैं मलमूत्र साफ करने के लिए, इससे अच्छा आप मुझे ठीक कर देते। अच्छा प्रपोजल है कि नहीं? आप मुझे ठीक ही कर दीजिए, आप मलमूत्र साफ करने के लिए आते हैं, इसके तो मुझे इससे तो मुझे नर्क जाना पड़ेगा। तो जगन्नाथ जी कहते हैं कि हां मैं मलमूत्र साफ करने के आता हूं, मैं तुम्हारी पीड़ा को देख नहीं सकता, बहुत कष्ट होता है मुझे, लेकिन मैं ये कर रहा हूं इस वजह से, मैं तुम्हें ठीक इसलिए नहीं करूंगा, ठीक कर दूंगा तो तुम मुझे भूल जाओगे, लेकिन तुम इस कष्ट में रहोगे तो तुम मेरा स्मरण करोगे, मेरा स्मरण करोगे तो ये इस बात पर विश्वास रखो ये तुम्हारा आखिरी जन्म है, ये शरीर छोड़ के तुम मेरे पास आओगे, इस कारण से मैं तुम्हें ठीक नहीं कर रहा हूं। तुम बीमार रहोगे तो मेरा स्मरण करते रहोगे, स्मरण करते करते क्या होगा, मेरे लिए प्रेम जाग जाएगा और इस जीवन के बाद तुम मेरे पास आ जाओगे मेरे धाम। ये है भगवत कृपा, ये भगवान की विशेष कृपा होती है अपने भक्तों के ऊपर। श्रील प्रभुपाद जी ने एक लेक्चर दिया था 1966 में भगवदगीता के ऊपर, आठवें अध्याय के पांचवें श्लोक के ऊपर। तो प्रभुपाद ने यहां पर कुछ कष्टों के बारे में बताया है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, यस डिफिकल्टीज देयर ऑलवेज, हर समय कष्ट होता है, अगर आप स्कूल भी जाते हैं तो कष्ट होता है, लेकिन अगर आप अभ्यास करते हैं, शपथ लेते हैं कि मैं ये कार्य करके रहूंगा तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। और आप ये नहीं कह सकते कि संसार में रहें तो कष्ट नहीं होगा, निश्चित रूप से कष्ट होगा। और ये भी मत बोलिए कि कष्ट हो रहा है तो मैं भक्ति नहीं करूंगा, मुझे आज बुखार है तो अपनी माला नहीं करूंगा, मेरे आज पेट में दर्द है आज मैं भगवान का दर्शन नहीं करूंगा। यानी कि इस अवस्था में भी हमें कार्य करते रहने हैं। भक्ति जो है किसी भी अवस्था में की जा सकती है, ये बहुत जरूरी है हम भक्तों के लिए समझना, क्योंकि देखिए अभी अभ्यास नहीं करेंगे तो जीवन के अंतकाल में कैसे भगवान का स्मरण होगा। यम व्यम भाति स्मरण भाव तजे ते अंत कलेवरम तम तम एवेदि कौन्तेया सदा तद भाव भाविता। अंतकाल में जिस तरह का स्मरण होगा, भाव होगा, वही आपको उसी तरह का शरीर मिलेगा आपको। तो इसलिए जीवन भर अभ्यास अगर नहीं किया तो जीवन के अंतकाल में कैसे कृष्ण का स्मरण हो पाएगा। तो जीवन भर अभ्यास करने का मतलब है कि कितने भी कष्ट आए, किसी तरह की बीमारियां भी लगे, मानसिक हो शारीरिक हो, हरिनाम नहीं छोड़ना है। हरिदास ठाकुर यही बोले थे जब उनको 22,000 में पीटा गया था कोड़ों से। हरिदास ठाकुर क्या कहते हैं, मेरे शरीर का खंड खंड कर दो आप, लेकिन मैं हरिनाम लेना नहीं छोड़ूंगा। कौन कह रहे हैं? हरिदास ठाकुर कह रहे हैं। क्या देखिए उनकी महिमा है। नवाचार्य हरिदास ठाकुर को जब वो गंगा जी में डाल दिए तो हरिदास ठाकुर से वो जल्लाद कहने लगा था गंगा जी में फेंकने से पहले कि ये जो नवाब है मैं छोड़ेगा नहीं, आप मरते क्यों नहीं, हम इतना मार रहे हैं आपको। जल्लाद ने बहुत मारा था उनको, पीठ में इतने मारे मारे, इतने हैंटर मारे, 22,000 में पीटते गए, लेकिन हरिदास ठाकुर शरीर नहीं छोड़ रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी पत्नियां जो है सब विधवा हो जाएंगी, नवाब हमें नहीं छोड़ेगा, आप मरते क्यों नहीं हो। हरिदास ठाकुर कहते हैं चिंता मत करो, मैं भी शरीर छोड़ रहा था। हरिदास ठाकुर मरने के लिए तैयार हो गए, किसके लिए? उन जल्लादों के उद्धार करने के लिए, अपने कष्ट के बारे में नहीं सोचा उन्होंने। इसी तरह से ईसा मसीह ने क्या किया, सूली में चढ़ा दिया। उन्होंने क्या बोला, हे पिता ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं, इनको क्षमा कर दीजिए। तो जिस भक्त ने कष्ट उठाया है निश्चित रूप से उसको कृष्ण की कृपा मिली है। जितने भी उन्नत भक्त हुए हैं हमारे शास्त्रों में, जिनका भी वर्णन है, जितने भी उन्नत भक्तों ने, जितने भी उन्नत भक्त हैं, उन सभी भक्तों ने कष्ट पाया है, सभी भक्तों ने कष्ट पाया है, लेकिन वास्तव में कष्ट उनको होता नहीं है, हमें दिखाई पड़ता है कि उनको कष्ट हो रहा है। प्रभुपाद एक जगह भागवत के तात्पर्य में लिख रहे हैं कि गुरुदेव कभी कष्ट में नहीं होते, क्योंकि अगर वो कष्ट में है तो 24 घंटे कैसे कृष्ण की सेवा कर पाते हैं। क्योंकि उनको हरिनाम में, उनको सेवा में इतना आनंद आ रहा होता है कि शारीरिक कष्ट की बिल्कुल अनुभूति नहीं होती है। इसलिए श्रीपाल माधवेंद्रपुरी को नहीं पहचान पाए रामचंद्रपुरी। रामचंद्रपुरी बोलते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्ना पर शोचती न कांक्षती, आप तो निर्विषय भ्रम में ध्यान लगाइए, आप रो रहे हैं, आप तो सन्यासी हैं, गुरु हैं, आपको तो खुश रहना चाहिए, निर्विषय भ्रम के ऊपर ध्यान लगा रहे हैं आप, निर्विषय भ्रम के ऊपर ध्यान लगाइए, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचती न कांक्षती, आप रो रहे हैं। तो माधवेंद्रपुरी ने क्या बोला रामचंद्रपुरी को, गेट आउट यू सिंफुल रास्कल, डोंट शो मी योर फेस, यही बोला था श्रीपाल माधवेंद्रपुरी ने, दुष्ट धूर्त निकल जाए यहां से, तुम्हारा चेहरा नहीं देखना चाहता मैं, संगति नहीं प्राप्त होगी मुझे अगर तुम्हारा चेहरा देखकर शरीर छोड़ा मैंने, गेट लॉस्ट। तो श्रीपाद माधवेंद्रपुरी वहां पर वियोग में है, राधारानी के भाव में है कि राधारानी प्रार्थना कर रही है कृष्ण से, हे मथुरानाथ कब आपके दर्शन होंगे, इस भाव में थे श्रीपाद माधवेंद्रपुरी, लेकिन पहचान नहीं पाए कौन, रामचंद्रपुरी पहचान नहीं पाए, लग रहा था रामचंद्रपुरी को कि श्रीपाद माधवेंद्रपुरी कष्ट में है, शैया में है, मृत्यु के शैया में लेटे हैं, लेकिन श्रीपाद माधवेंद्रपुरी तो उस आनंद में है, आनंदा बुद्धिवर्गम प्रतिपदम पूर्णामृता आस्वादनम सर्वांग प्रसन्नम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन। या फिर श्रीमती राधारानी कह रही है, चैतन्य महापुरुष कह रहे हैं, अश्लिष्य वा पादरताम विनश्य माम अदर्शनाम मर्महताम करोतु वा यथा तथा वा विधातु लंपटो मत प्राणातस्तु सदा एव परः। श्री चैतन्य महापुरुष क्या कह रहे हैं, मेरा गाढ़ अलिंगन करिए या दर्शन देकर मर्महत करिए, आप तो लंपट है, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप मेरे प्राणनाथ हैं। इसलिए राधारानी का भाव क्या है, राधारानी क्या कर रही है, राधारानी कह रही है उनका भाव यह है कि अगर मुझे कष्ट देकर आपको सुख मिलता है तो ऐसा कष्ट ही मेरा लिए सबसे बड़ा सुख है, मुझे अगर कष्ट देकर अगर आपको सुख मिलता है तो ऐसा कष्ट ही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है, लेकिन अगर मैं सुखी हूं बाहरी रूप से, उससे अगर आपको दुख होता है वो सबसे बड़ा दुख है मेरा। तो भक्त क्या चाहता है, भगवान को प्रसन्न करना चाहता है, और भगवान को प्रसन्न करने के लिए वो किसी तरह का भी कष्ट उठाने के लिए तैयार है। इसे श्रील प्रभुपाद चौथे स्कंद के भागवत के चौथे स्कंद के एक तात्पर्य में लिख रहे हैं प्रभुपाद, क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद, लिख रहे हैं लॉर्ड वॉन्ट्स टू सी हाउ मच यू आर पेन स्टेकिंग इन डिवोशनल सर्विस, भगवान देखना चाहते हैं कि हम कितना कष्ट उठाने के लिए तैयार है। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने एक बार बहुत अच्छी बात बताई, उन्होंने कहा कि कंफर्टेबल सिचुएशन फॉर अ डिवोटी इज लाइक अ कॉफिन, मेटीरियल कंफर्ट फॉर अ डिवोटी इज लाइक अ कॉफिन, कॉफिन का मतलब जानते हैं कब्र, भौतिक सुविधा भौतिक आराम एक भक्त के लिए क्या है, एक कब्र के समान है। इसलिए भक्त का जीवन जो है तपस्या में बीतता है, वैराग्य में बीतता है, समर्पण में बीतता है, जब ऐसा वो करता है तो उसको आनंद आता है, और जब उसको आनंद आता है कोई कष्ट भी आते हैं तो कष्ट को बड़ी आसानी से झेल जाता है, पता ही नहीं चलता है। बिल्कुल वैसे ही एक व्यक्ति जब बीएमडब्ल्यू में जाता है, सड़क में बहुत ज्यादा जर्क्स है लेकिन जर्क का पता नहीं चलता है, उसी रस्ते से कोई और जाता है ठेले में, वो झटके खाता रहता है, उसकी आंतें भी हिल जाती हैं। तो इसी तरह से हमारे जो भक्त हैं वो कष्ट जब उठाते हैं तो उनको कष्ट का पता नहीं चलता है, क्यों, क्योंकि उनको भक्ति में आनंद प्राप्त होता है, भक्ति में आनंद प्राप्त होने के कारण उनको सांसारिक कष्ट कष्ट के रूप में नहीं दिखाई देता है, वो क्या दिखाई देता है, ये तो कृष्ण की कृपा है, ये राधारानी की कृपा है, ये कृपा है मेरे ऊपर कि मुझे इतना कष्ट मिल रहा है कि अब मैं भगवान को याद कर पाऊंगा। इसलिए जब कष्ट आता है तो घबराना नहीं चाहिए, भक्तों को घबराना नहीं चाहिए, और हां केवल घबराना ही नहीं चाहिए, साथ में सेवा भी हमारी बंद नहीं होनी चाहिए। कोई कह सकता है प्रभु जी मेरे पांव में बहुत दर्द है, पांव में चोट लगी है, मैं मंदिर नहीं जा सकता हूं, मेरी सारी सेवाएं रुक गई, मैं तो प्रचार करता था, कोई बात नहीं, अगर आप अभी प्रचार नहीं कर सकते हैं तो लेट के कृष्ण कथा का श्रवण करें, कितना सिंपल है देखिए भक्ति, भक्ति कितनी सरल है, अगर एक विधि का पालन नहीं कर सकते दूसरी विधि का पालन कर सकते हैं, हर विधि आपने आप में क्या है, पूर्ण है, परफेक्ट है, इतना बढ़िया है भक्ति का, इतना जो है महत्व है। इसलिए परीक्षित महाराज को 7 दिन रह गए, केवल 7 दिन 7 रात श्रीमद भागवत का श्रवण कर रहे हैं, और वो जाके क्या पूछ रहे सुखदेव गोस्वामी से, जो वर्णाश्रम व्यक्ति है जीवन के अंत काल में है उनको किसका ध्यान लगाना चाहिए, किन नामों का जप करना चाहिए, किसका स्मरण करना चाहिए, सुखदेव गोस्वामी से श्रीमद भागवत सुना रहे हैं उनको। परीक्षित महाराज ये नहीं पूछ रहे हैं मेरे किंगडम का क्या होगा, मेरे मंत्रियों का क्या होगा, जायदाद का क्या होगा, किसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूं मैं, मेरे पत्नी बच्चों का क्या होगा, नहीं, और जो शत्रु है कैसे मारे जाएंगे, ऐसा तो नहीं मेरे मरने के बाद वो मेरे राज्य के ऊपर आक्रमण कर लेंगे, ये सब कोई चिंता नहीं है परीक्षित महाराज, क्यों चिंता नहीं है, क्या कारण है बताइए, कौन बताएगा? परीक्षित महाराज को क्यों चिंता नहीं है सांसारिक चिंता? हाँ जी, कैसे आश्रित हुए? शाप तो बाद में मिला जीवन के अंतकाल में, उससे पहले कैसे हुआ? बचपन से ही वो कृष्ण के भक्त है, बचपन से ही वो अभ्यास कर रहे हैं, बचपन से ही वो भगवान का स्मरण करने का अभ्यास कर रहे हैं और स्मरण कर पा रहे हैं, ये कृष्ण की विशेष कृपा है। परीक्षित महाराज, परीक्षित नाम कैसे पढ़ा कि परखते थे, वो एग्जामिन करते थे, देखते थे कि कृष्ण कहां है, जिनका दर्शन मैंने किया था माता उत्तरा के घर में वो कहां है, कोथा गेला ठाकुर कहां गए ठाकुर, आप आपका दर्शन नहीं प्राप्त हो रहा है। तो बचपन से परीक्षित महाराज ने वो अभ्यास किया है, इस कारण से जीवन के अंतकाल में वो कृष्ण का स्मरण कर पाए हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी जैसे मां भागवत के बाद गए श्रीमद भागवत का श्रवण करने के। और देखिए बहुत अच्छी बात बताते हैं आपको, उसके बाद हम विराम देंगे। राजा कुलुक्षेत्र मुकुंद माला स्त्रोत्र में क्या करें, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंचरांतम अद्वैव मे विशत मानस राज हमसा प्राण प्रयाण समय कफवात पित्त कंठा और अधोन विदो स्वर्णम कुतस्ते, कि अंतकाल में जीवन के अंतकाल में कंठ कफवात और पित्त से भर जाएगा, फिर कैसे मैं आपके नामों को उच्चारण करूंगा, कैसे आपका स्मरण करूंगा, सब कुछ जो है क्या हो जाएगा, स्तब्ध हो जाएगा, चेतना शायद नहीं काम करेगी मेरी, मेरा ब्रेन ठीक से काम नहीं करेगा, लाइफ पेड़ सारे बिगड़ जाएंगे मेरे शरीर के, कफवात से भर जाएगा ये कंठ, अचेत अवस्था में पहुंच जाऊंगा, हो सकता है कोमा हो जाए मुझे, कैसे फिर हरे कृष्णा करूंगा उस समय? तो इसका उत्तर वायु पुराण अग्नि पुराण में दिया है, मुझे ठीक से श्लोक याद नहीं है, लेकिन ठीक श्लोक का उत्तर दे रहे हैं भगवान। क्या उत्तर दे रहे हैं? जिसने जीवन भर श्रवण कीर्तन किया है, जिसने जीवन भर मेरी सेवा किया है, अंतकाल में अगर उसका कंठ कफवात और पित्त से भर जाता है और मेरा स्मरण नहीं कर पाता है, कोई समस्या नहीं है, भगवान कहते हैं कि मैं उसको क्षमता दूंगा, मैं उसको शक्ति दूंगा जिसके द्वारा वो मेरा स्मरण कर पाए। आज क्या है, जैसे कि गीता में भगवान बता रहे हैं, अनन्य चिंतयन तो मां ये जना पर उपासते तेषां नित्याभियोग तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम बहाम्यहम्। जितनी भक्ति आपने की है उस भक्ति की भगवान रक्षा करेंगे, और भक्ति में जो कमी रह गई है उस कमी को भी भगवान पूरा करेंगे। इसका अर्थ ये है। तो अनर्थों की चिंता ना करें, अर्थ प्रवृत्ति की चिंता करें, ऐसा श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहते हैं। अर्थ प्रवृत्ति की चिंता करें, सेवा करते जाए, श्रवण कीर्तन करते जाए, अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाते जाए, हृदय से समर्पित होते जाए, थोड़ी बहुत जो कमी रहेगी उस कमियों को देखेंगे विधि भगवान। अदोषदर्शी है भगवान, इसलिए अजामिल ने इतने पाप किए, लेकिन जैसे अपने बच्चे को बुलाया, हमने तो इसलिए माता कुंद महाराज से यह सुना था, यहां तक वो कहते हैं, महाराज कहते हैं कि जिस दिन अजामिल ने अपने बच्चे का नाम नारायण रख दिया उसी दिन सारे पाप कट गए उसके, जीवन के अंतकाल में नहीं, क्योंकि वो जो आए थे चार संत महात्मा आए थे, बता रहे थे कि चार संत महात्मा एक गांव में गए और वहां पर बच्चे खेल रहे थे, तो बच्चों से पूछा यहां पे कोई रहने की व्यवस्था है, हम तीर्थ यात्रा में निकले थे, आपके इस गांव में रहना चाहते हैं, कनौज में गए थे। तो बच्चों ने मजाक मजाक में कह दिया, हाँ हाँ इस गांव में बहुत एक अच्छा ब्राह्मण रहता है, तीर्थयात्री जितने भी आते हैं उसी के घर में रुकते हैं, सीधे जाके दाग मोड़ जाओ, वहां जामे का घर था। तो ये बेचारे चार संत वहां जो गए उनके घर पे गए और वहां देखा तो वैश्या खड़ी, पता चले वैश्या का घर है। तो पूछी कि यहां अजामिल रहते हैं? अजामिल तो कई बाहर गए डकैती करने, चोरी चकारी करने, उनका ठेली का प्रोफेशन है, तो आप विश्राम करिए आ जाएंगे। तो कह रहे तो गलत जगह आ गए, हम लोग चार सत्य सौ रह गए, अब क्या करें, समझ में नहीं आ रहा है, चलो ठीक है थोड़ा रुकते हैं फिर देखते हैं। तो उतने में अजामिल आ, तो कहते हैं वो चार संत कहते हैं हमारी ये प्रार्थना है, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अब जा रहे हैं तो कम से कम कुछ उद्धार करते हुए जाएंगे, नहीं तो ये तो बस पाप कर लिया, इतना सारा पाप कर चुका है, नर्क में जाएगा निश्चित रूप से। तो वो चार संत बोले, वो संत महात्मा बोले हमारी इच्छा है आप अपने बच्चे का, जो आपकी संतान होने वाली है दसवीं संतान, इस बच्चे का नाम आप नारायण रखिएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है महात्मा जी, आप जैसा कहते हैं वैसे ही कर देंगे। अजामिल ने कहा ठीक है आज से हमारे बच्चे का नाम नारायण हो, डन। अब ये तो नहीं कि श्रद्धा भक्ति जागृत हो गई अजामिल उस समय, और ऐसे कह दिया नहीं, फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए चलो संत महात्मा है इनकी भी लाज रख ले, घर आए मेहमान है इनका आदर करना चाहिए, चलो जी हमने बच्चे का नाम उन्हें नारायण रख दिया, हो गया काम आपका। तो जानते हैं उसी समय मानव बता रहे की वैकुंठ में भगवान देख रहे हैं और लक्ष्मी जी को कह रहे हैं, देखो इस भक्त ने मेरा नाम लिया है, ये मेरा भक्त है। अजामिल ने भगवान का नाम नहीं लिया, वो तो बोल रहा था हमारे बच्चे का नाम आज से नारायण है, लेकिन भगवान कैसे अदूरदर्शी है और भगवान कैसे देख रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि इसने मेरा नाम लिया, ये मेरा भक्त है, मुझे इसकी रक्षा करनी चाहिए, लक्ष्मी जी को कह रहे हैं भगवान। और उसके बाद जब बच्चा जब बड़ा हो गया और अजामिल बार बार थोड़ा जब बड़ा हो गया बच्चा, तो अजामिल बार बार अपने बच्चे को पुकारते थे, नारायण जूता लेके आओ, नारायण खाना लेके आओ, नारायण कपड़े लेके आओ, नारायण चलो बाहर घूमने चले, नारायण नारायण नारायण। तो फिर वहां बता रहे थे, बार बता रहे थे कि बैकुंठ पे भगवान फिर से लक्ष्मी जी को कह रहे हैं, देखो ये जो मेरा भक्त है और नाम संकीर्तन में लगा हुआ है। वो तभी जो है वो भगवान को नहीं पुकार रहा था, अपने बच्चे से आसक्त हो गया था, वैश्या से ध्यान हट गया, लेकिन सारा ध्यान किस में लग गया, बच्चे में लग गया। ठीक, इसलिए भगवान अदूरदर्शी है, इसलिए हम समर्पित रहेंगे तो भगवान ये नहीं देखेंगे ये तो हाथी है, हाथी योनि में कोई कैसे भक्त बन सकता है, अगले जन्म में देखेंगे जब मनुष्य बनेगा तब मैं आऊंगा गरुड़ जी में बैठ के, ऐसा नहीं सोचा भगवान ने। भगवान ने तो केवल ये देखा कि इसे मेरा नाम पुकारा है, मुझे बुलाया है, देवी देवताओं को नहीं बुलाया है, ये प्रार्थना मेरे लिए है। तो भगवान गरुड़ जी में बैठ कर आ गए और क्या कर रहे हैं, गजेंद्र को दर्शन कर रहे हैं, उसका उद्धार कर दिया। अगले श्लोक में लिखा है कि गजेंद्र को मुक्त कर दिया, भगवत धाम की प्राप्ति हो गई, गजेंद्र को स्वरूप मुक्ति प्राप्त हो गई। और यही महाभारत के युद्ध में हुआ। महाभारत के युद्ध में बताया जाता है कि जो भी योद्धा उस समय शरीर छोड़ता था उसको भगवान इसी तरह से दर्शन देते थे, गरुड़ जी में बैठ के चतुर्भुज रूप में, शंख चक्र गदा पद्म के चिन्ह थे, चतुर्भुज रूप में भगवान गरुड़ जी में बैठे हुए इस रूप का दर्शन करते हुए सारे योद्धा शरीर छोड़ते थे महाभारत में, और सबको भगवत धाम की प्राप्ति हो गई। यह है कृपा। इसलिए एक कष्ट नाम की कोई चीज ही नहीं है। अरे डॉक्टर अगर सर्जरी करता है वो सर्जरी उसको धन्यवाद देके उसको चेक देता है। इसी तरह से भगवान किसी को मारते भी हैं तो वो भी एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म है। भगवान किसी को कष्ट भी देते हैं उसमें भी अमृत छुपा हुआ है। इसलिए कष्ट जब आता है समझ लीजिए ये विशेष कृपा है एक्चुअली भगवान की। जब सुख प्राप्त होता है वो कष्ट है, वो वास्तव में कृपा नहीं है। कृपा कब है, जब गुरु जो है शिष्य को छापड़ मारते हैं, जब गुरु जब शिष्य को छापड़ मारते हैं, जब गुरु शिष्य को डांटते हैं, यह शिष्य के ऊपर कृपा होती है। कृपा वो नहीं है तुम बहुत बढ़िया प्रचार कर रहे हो, बहुत अच्छा प्रवचन दिया तुमने, मैंने तुम्हारा प्रवचन सुना था, और शिष्य फूल गया एक अंदर से गुब्बारे की तरह बिना हवा के, हवा के साथ चलो वो फूल गया एकदम से शिष्य, सुन रहे आप तो गुरुदेव ने मेरी तारीफ की है हजार लोगों के सामने, वाह अब तो नेक्स्ट जो आचार्य मैंने मुझे ही बनना है। तो इस तरह से फूला नहीं समाता है वक्त पर, जब तारीफ सुनने को बन जाती है। इसलिए गुरु जो है शिष्य को इसलिए उसकी प्रशंसा नहीं करते हैं। क्यों नहीं प्रशंसा करते हैं, क्योंकि जानते हैं ये इसके हित के लिए नहीं है। तो इसलिए प्रभुपाद से जब प्रभुपाद ने शिष्यों से पूछा व्हाट इज द ड्यूटी ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, तो प्रभुपाद ने बोला अल्टीमेटली प्रभुपाद ने कहा ड्यूटी ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर टू फाइंड फॉल्ट इन द डिसाइपल। तो गुरु से उम्मीद ना करेंगे हमारी तारीफ करेंगे, बिल्कुल वैसे ही है जिस तरह से कृष्ण कृपा करते हैं, गुरुदेव भी इस तरह से कृपा करते हैं, वैष्णव भी इस तरह से कृपा करते हैं, हमें डांटते हैं फटकारते हैं, ये वास्तव में उस वैष्णव की कृपा है। हमने सुना किसी को बोलते हुए बता रहे थे, बालक बता रहे थे कि वैष्णव की जब डांट पड़ती है ना, वैष्णव की जब डांट पड़ती है तो जानते क्या होता है, जिसने वैष्णव की डांट सहन कर ली, जिसने वैष्णव की डांट सहन कर ली समझ लो वो भक्ति में निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा, गारंटी है। लेकिन जिसने वैष्णव की डांट नहीं सहन की तो बस बहुत मुश्किल है, फिर तो बहुत मुश्किल। इसलिए कृष्ण की कृपा जो है इस रूप में आती है उसको कृपा की तरह हमें लेना चाहिए, और ये प्रोसेस हमें दिया गया है हमारे शास्त्रों में, जो प्रोसेस दिया उसको फॉलो करना है। और जब निष्ठा के स्तर पर पहुंचेंगे, निष्ठा के स्टेज में जब तक नहीं पहुंचते, जब तक अनर्थों से निवृत्त नहीं होते हम लोग, तब तक ऐसा लगेगा कि हम सीढ़ियों से चढ़ के जा रहे हैं। लेकिन जब निष्ठा के स्टेज को क्रॉस कर जाएंगे कष्ट तभी भी आएगा, तब भी कष्ट भगवान देंगे। भारत ध्वस्त होने के बाद भी जिस तरह से पांडवों को कष्ट मिला या प्रहलाद भारत को कष्ट मिला, तो ऐसा लगता है कि कष्ट मिला लेकिन कष्ट नहीं है। उस अवस्था में कैसा लगेगा, हम लिफ्ट में जा रहे हैं, हम सीढ़ियों से चढ़ के नहीं जा रहे हैं, हम लिफ्ट में होकर जा रहे हैं। कष्ट होते हुए भी आपको कष्ट की अनुभूति नहीं होगी, क्योंकि नाम में आपकी रुचि होगी। एक बार नाम में रुचि आ जाए आपका जीवन का अंत काल जो है, जीवन का अंत काल आनंद ही आनंद में बीतेगा। कितने भी बीमारी आपके शरीर को लगे हो, देखने में ऐसा लगेगा कि आपका शरीर जो सबसे ज्यादा पीड़ित है, पैरालिसिस हो गया है, बहुत सारा प्रॉब्लम आ गई, कैंसर हो गया है। जैसे जयनंद प्रभु को ब्लड कैंसर हो गया था, लुकूमिया ब्लड कैंसर, वो टैक्सी चलाते थे और उन्होंने पहली बार $5,000 दिए थे श्रील प्रभुपाद जी को। उनको ब्लड कैंसर हो गया था, उनके घर वालों ने $5,000 भेजे थे इलाज करने के लिए। उन्होंने क्या किया, सारा का सारा पैसा प्रभुपाद जी को दे दिया। प्रभुपाद रोने लगे, प्रभुपाद ने उनको लेटर लिखा जब वो शरीर छोड़ दिए, चिट्ठी लिखी प्रभुपाद ने। और कहते हैं कि आपने जो सेवा की है उसको कभी कृष्ण नहीं भूलेंगे, और अगर आप की भक्ति की परिपक्व अवस्था में नहीं पहुंचे हैं तो क्या होगा, आप ऊंचे लोगों की प्राप्ति हो गई। लेकिन जहां तक तुम्हारी भक्ति को देखकर मुझे लगता है तुमने जिस भाव से सेवा की है इसमें कोई संशय नहीं है, निश्चित रूप से तुम्हें भगवत धाम की प्राप्ति हुई। प्रभुपाद ने खुद अपने यहां किसी के लिए नहीं बोला था, अपने समय में प्रभुपाद ने किसी के लिए नहीं बोला ये बात, अपने समय में जब तक वो प्रभुपाद जी थे, प्रभुपाद ने केवल जयनंद प्रभु के लिए चिट्ठी में लिखा था। और जयनंद प्रभु को ब्लड कैंसर हो गया था, लेकिन प्रभुपाद के लिए क्या किया, सारा का सारा पैसा दे दिया। उन्होंने कहा मुझे प्रभुपाद ये पैसा नहीं चाहिए, घर वालों ने मेरे इलाज के लिए भेजा, मैं तो वैसे ही मरने वाला हूं, तो यहां भी पैसा रख लीजिए, प्रचार के लिए यूज हो जाए। देखिए कि जयनंद प्रभु जो है उनको नाम इतनी रुचि आ गई कि अब जो पैसा उनको आकर्षित नहीं कर रहा है, उनका ध्येय उनको आकर्षित नहीं कर रहा है, वो अपने को नहीं बचाना चाहते हैं, अपने को स्वस्थ नहीं रखना चाहते हैं, वो तो क्या चाहते हैं, किसी ना किसी प्रकार से प्रभुपाद खुश हो जाए। बस प्रभुपाद खुश हो गए, गुरु खुश हो गए, तो बस वही है स्वस्थ शरीर। और अगर गुरु खुश नहीं हुए तो वो है रुग्ण अवस्था, वो है रुग्ण अवस्था। यही हरिदास ठाकुर कह रहे हैं जब चैतन्य महाप्रभु आ रहे हैं हरिदास ठाकुर से मिलने के लिए, हरिदास ठाकुर कह रहे हैं कि मैं रुग्ण अवस्था में हूं महाप्रभु, मुझसे हरिनाम नहीं लिया जा रहा है, मैं नामों का जप नहीं कर पा रहा हूं महाप्रभु, मुझसे जप नहीं हो रहा है, यही मेरी बीमारी है। चैतन्य महाप्रभु पूछ रहे हैं आपकी बीमारी क्या है, व्हाट इज योर डिजीज, आपकी बीमारी क्या है, तो हरिदास ठाकुर कहते हैं मेरी बीमारी यह है कि मैं जप अपना पूरा नहीं कर पा रहा हूं, अपनी संख्या पूरी नहीं कर पा रहा हूं। तो प्रभुपाद तात्पर्य लिख रहे हैं इस आंदोलन में हमने भक्तों को निर्देशन दिया कि कम से कम वो 16 माला का जप करें, जो संख्या को पूरी नहीं कर पाते हैं वो आध्यात्मिक जीवन की रुग्ण अवस्था में, प्रभुपाद लिख रहे हैं तात्पर्य। तो यह है हमारी रुग्ण अवस्था कि हम श्रवण कीर्तन नहीं कर पाते हैं, अपनी माला पूरी नहीं कर पाते हैं, कृष्ण की सेवा नहीं कर पाते हैं, यह है हमारी बीमारी, यह है असली में कष्ट। कष्ट यह नहीं है कि शरीर में बीमारी लगी है, ट्यूबरक्लोसिस हो गया, कैंसर हो गया, टाइफाइड हो गया या पैरालिसिस हो गई, बीमारी नहीं हमारी, यह तो शरीर की बीमारी है, शरीर तो वैसे ही छूट जाएगा आपका। लेकिन असली बीमारी क्या है, भव रोग। और यह बीमारी क्या है कि हम श्रवण कीर्तन नहीं कर पाते हैं अपराधों के कारण, यह हमारी बीमारी की अवस्था है। तो इसलिए इन महान भक्तों ने, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों ने कितने सारे मगरमच्छों के साथ युद्ध किया, कितने सारे मगरमच्छों का युद्ध किया जीवन के अंत काल में, जैसे भक्ति तीर्थ महाराज है, या हिजुलर श्रीधर महाराज है, या वर्तमान समय में देखिए हिजुलर जयपदा का महाराज है, या हिजुलर राधा गोविंद महाराज है, कितना शरीर में कष्ट दिखाई दे रहा है इनके शरीर में, लेकिन इनमें से एक भक्तों ने भी जो है कृष्ण की सेवा नहीं छोड़ी। कृष्ण कथा चलती जा रही है, श्रवण कीर्तन चलता जा रहा है, कृष्ण की सेवा करते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको आनंद मिल रहा है हरिनाम का। आनंद क्यों मिल रहा है? क्योंकि इन्हें जीवन भर जो है गुरु की सेवा ठीक से की है। जिसने जीवन भर गुरु की सेवा ठीक ठीक से की है, जीवन के अंत काल में कितना भी कष्ट आए वो कष्ट लगेगा ही नहीं। बड़ी आसानी से, जिस तरह से ध्रुव महाराज जो है मृत्यु के सर पे पांव रखकर वैकुंठ धाम में प्रवेश कर गए, इसी तरह से जो भक्त जो है कष्ट को कष्टदा समझ के बड़ी आसानी से भगवान के धाम प्रवेश कर जाते हैं। तो इसलिए हम देखते हैं इसलिए सारे भक्त, हम देखा खुद अपनी आंखों से हिज होलियस श्रीधर महाराज को, जो कैनेडा में उस समय थे, तो उनको लीवर में काफी पानी भर गया था और पूरा पेट उनका पूरा फूला हुआ था, बहुत कष्ट में थे महाराज, और बिल्कुल का शरीर सूख गया था। तो कनाडा में डॉक्टर्स ने कहा कि अब आप कहीं नहीं जा सकते, ट्रैवलिंग आपका बिल्कुल बंद। उन्होंने कहा मैं तो मायापुर जा रहा हूं, मुझे मायापुर जाना है, फेस्टिवल का टाइम है, मुझे मायापुर जाना है। नहीं नहीं जा सकते आप, ट्रैवलिंग नहीं अलाउड है। तो कैसे भी हॉस्पिटल से बाहर निकल आए और उसके बाद फिर कनाडा से मायापुर आ गए। कनाडा से मायापुर फ्लाइट में आना कोई मजाक नहीं है, नहीं वो भी ऐसे बीमार व्यक्ति के लिए जिनको मना किया गया है बेड से हिलने के लिए। मायापुर आए और मायापुर आने के बाद फिर उनको उनकी इच्छा बहुत हुई, क्योंकि उस साल पंचतत्व का अभिषेक था, पंचतत्व का अभिषेक यहां प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, पंचतत्व का अभिषेक करने की इच्छा हुई महाराज को। उस दिन को रेस्ट्रिक्शन हो गया था उस साल कि केवल 2 GBCs को अलाउ किया गया था पंचतत्व अभिषेक के लिए, और कुछ वरिष्ठ भक्तों को, सबको नहीं अलाउ कर रहे। लेकिन श्रीधर महाराज को परमिशन मिल गई और श्रीधर महाराज ने भी अभिषेक किया, पंचतत्व का अभिषेक किया। उस अवस्था में इतने बीमार थे महाराज, बहुत बीमार थे कि तीन तीन चार चार लोग पकड़कर उनको लेके जा रहे थे। उसके बाद फिर क्या हुआ, उनकी इच्छा हुई श्रील प्रभुपाद जी का विशेष अभिषेक किया गया था समाधि मंदिर में, और महाराज की इच्छा हुई कि मैं प्रभुपाद जी का अभिषेक भी करना चाहता हूं, तो प्रभुपाद जी का अभिषेक करने का भी मौका मिला, अभिषेक भी किया। उसके बाद उनकी इच्छा हुई कि गौर पूर्णिमा उत्सव में मैं महाप्रभु का अभिषेक करना चाहता हूं पंचतत्व का, वो भी इच्छा पूरी कर दी महाप्रभु ने और पंचतत्व का भी अभिषेक कर लिया। और उसके बाद शिवास ठाकुर के तिरुभाव दिवस के दिन महाराज ने जो है मायापुर धाम में शरीर छोड़ा। इस सारे उत्सव में भाग लेके, क्योंकि उन्होंने जीवन भर सेवा की प्रभुपाद की, महाप्रभु ने ऐसी व्यवस्था की कि उनको मायापुर धाम में शरीर छोड़ने का मौका मिल गया। ये बताया गया है कि अगर जो कोई गुरु की सेवा करता है तो स्वयं ऐसे शिष्य की सेवा करने के लिए स्वयं महाप्रभु आते हैं, ऐसे शिष्य की सेवा करते हैं महाप्रभु। इसी कारण से श्रीपाद ईश्वरपुरी के शिष्य बनाए श्री चैतन्य महाप्रभु। क्यों? क्योंकि श्रीपाद ईश्वरपुरी ने श्रीपाद माधवेंद्रपुरी की सेवा की थी अंतकाल में। इस कारण से यह जो है लाभ मिलता है गुरु की सेवा करने का। और इसके अलावा हम देखते हैं इवन भक्ति तीर्थ महाराज जो अमेरिका में शरीर छोड़ रहे थे, उन्होंने देखा सपने में, क्या देखा कुछ ही समय पहले शरीर छोड़ने से पहले सपने में उन्होंने देखा, क्या देखा उन्होंने, उन्होंने देखा कि यमराज जी आ रहे हैं या यमदूत आ रहे हैं, तो वो घबरा गए थे। और सपने ही सपने में वो प्रभुपाद से पूछ रहे हैं कि प्रभुपाद ने कहा था कि कोई अगर जीवन भर 16 बारा करेगा, चार नियमों का पालन करेगा, अब स्वयं आएंगे उसका उद्धार करने के लिए, और मैंने तो आज तक कोई नियम नहीं तोड़ा है और रोज ही मैंने 16 माला अपना पूरी किए हैं। तो फिर उसके बाद उन्होंने क्या देखा सपने में, सपने में देखते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी आ रहे हैं, और क्या किए वो, प्रभुपाद जी ने महाराज का हाथ पकड़ा और उनको लेके चले गए धाम, और यमराज जी देखते ही रहे। उसके बाद आंखें खोली उन्होंने, सपना पूरा हुआ, और सामने कौन बैठे थे, हिसोलेन महाराज स्वामी महाराज बैठे थे, और महाराज को पूरा उन्होंने इंसिडेंट बताया कि ऐसे ऐसे मैंने देखा है। और उसके कुछ ही समय के बाद उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। वो उनको ले जाना चाहते थे वृंदावन, वो कहता है वृंदावन चलिए अब अंतिम समय में, उन्होंने कहा नहीं, मैं कुरुक्षेत्र में युद्ध भूमि में ही शरीर छोड़ना चाहता हूं। ये भाव था उनका भक्ति तीर्थ महाराज का, प्रचार करते हुए मैं शरीर छोड़ना चाहता हूं। देखिए ऐसे ऐसे भक्त हुए हैं, ऐसा नहीं कि प्रभुपाद के बाद कोई हुआ नहीं, प्रभुपाद जी के बाद उनके शिष्य हैं जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया प्रभुपाद जी की सेवा में, इसलिए प्रभुपाद की इतनी कृपा मिली है उन शिष्यों। ऐसे कितने सारे उदाहरण है। अब देखिए इसने जयपाता का महाराज को देखिए, आप उनकी क्या हालत है फिजिकल उनका देखिए, चार लोग लगते हैं उनको उठाने में, चार लोग लगते हैं, चार भक्त लगते हैं उनको लिटाने के लिए, समझ रहे आप, और अकेले वो खुद प्रसाद भी नहीं ले सकते हैं, उनका चमन भी अलग तरीके का बना हुआ है, और कई बार प्रसाद नीचे भी गिर जाता है, चल नहीं पाते वो अकेले, बैठ नहीं पाते हैं, नहा नहीं पाते वो, शौच क्रिया में नहीं जा पाते हैं, सारा कुछ भक्तों को उनके लिए करना पड़ता है। गुरु की सेवा करने का मौका मिल गया है शिष्यों को, जो भी शिष्य उनकी सेवा कर रहे हैं उनको अनमोल धन प्राप्त होगा कृष्ण भक्ति का। तो देखिए, लेकिन उसके बावजूद भी हमने एक बार पूछा महाराज से, मैंने कहा महाराज महाराज बता रहे थे कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने पूरे भारतवर्ष की यात्रा की, उसी तरह से जानते हो कृष्ण भी गए थे दक्षिण भारत की तरफ, जब वो काल्यवन की कथा सुनाए थे महाराज ने, कि काल्यवन पीछे भागा था कृष्ण के और रणभूमि छोड़ के भागे थे, मुचकुंद का उद्धार किया था, वो दक्षिण भारत में वो गुफा है जहां मुचकुंद का उद्धार किया है। तो इस तरह से कृष्ण भी यात्रा की, महाप्रभु ने भी यात्रा की। मैंने कहा महाराज अभी यात्रा कर रहे हैं पूरे विश्व की, तो महाराज कहते हैं, महाराज कहते हैं हाँ पहले तो मैं 11-12 बार जाता था विश्व की यात्रा में, साल में 11-12 बार मैं यात्रा करता था, अब तो 5-6 बार ही कर पाता हूं। इस अवस्था में भी महाराज व्हील चेयर में बैठ के इन भक्तों के साथ जब महाराज क्या करते हैं इंटरनेशनल ट्रैवलिंग में जाते हैं, कितनी बार हॉस्पिटल जा चुके हैं, कितनी बार आईसीयू में, अभी आईसीयू में थे महाराज 2 दिन पहले, उनको फिर से उनके लिवर में पानी भर गया था, कभी फेफड़ों में पानी भर रहा है, कभी लिवर में पानी भर रहा है, ऐसा लगता है कि उनके शरीर में कोई सामान घुस गया, सामान बाहर फेंको फिर चलो जी काम शुरू करो, फिर कोई सामान आता है फिर उठा के बाहर फेंको फिर शुरू करो सेवा। और हम उनसे मिलने गए थे महाराज से होटल, ये जो हॉस्पिटल है ना ILBS, क्या ILBS है, लिवर एंड बाइलरी इंस्टीट्यूट, वहां पे वसंत कुछ में उनसे मिलने गए थे महाराज से, महाराज आईसीयू में थे, महाराज के चेहरे में मास्क लगा हुआ था ऑक्सीजन का। तो वहां डॉक्टर जो सरीन है उन्होंने बताया कि आज तक मैंने ऐसा व्यक्ति नहीं देखा अपने जीवन में, वो कहते हैं इतनी बीमारी उनको लगी हुई है, पैरालिसिस है, क्या क्या प्रॉब्लम है, कितना ब्लड में इंफेक्शन है, लिवर में पानी घुसा हुआ है, ऑक्सीजन मास्क लगा हुआ है, और फिर भी हंस रहे, रंच मात्र भी जो है उनके चेहरे में भय नाम की चीज ही नहीं है। वो डॉक्टर कहता है कि पूरे जीवन भर मैंने ऐसा व्यक्ति आज तक नहीं देखा। और महाराज जो है मैंने जैसे महाराज से मिल गया, मैंने कहा महाराज हमने एक कार्टन गीता जो है यहाँ पे सब हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को और यहाँ के अटेंडेंस को दिया है, हम लेके आए थे साथ में, तो महाराज ऐसे कर रहे थे। और जब मैं गया था अंदर गया महाराज से मिलने के लिए, तो महाराज जोर जोर से जब कर रहे हैं, काउंटर हाथ में है, काउंटर रखा है महाराज ने कि बाला पकड़ नहीं पा रहे हैं तो काउंटर रखा था महाराज ने, काउंटर पकड़ के महाराज जोर जोर से जब कर रहे थे, जोर जोर से, और आसपास के पेशेंट भी सुन रहे हैं हरिनाम। और मारे मजे में है बिल्कुल भी एक परसेंट उनके चेहरे में कष्ट नहीं था। सोच के देखिए ये देखिए खूबी है। और श्रीधर महाराज के कौन बताया आपको, जब मायापुर में गए थे तो उनके रूम में गए थे हम, तो चार सारे तरफ प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स थे, उनका मतलब प्रभुपाद जी का गुणगान कर रहे थे, प्रभुपाद जी कथा सुना रहे थे, कोई कीर्तन कर रहा था, कोई को दर्शन कर रहा था, राधा माता का दर्शन करा रहा था, कोई चरणाम डाल रहा था मुंह में, तो अलग अलग तरह से महाराज को लोग भी सेवा में लगे हुए थे। तो श्रीधर महाराज को डॉक्टर आके बोलते हैं, और डॉक्टर कुछ प्रॉब्लम हो रही थी उनको, तो डॉक्टर आए चेक करने के लिए, तो उनके पेट में जो है उन्होंने स्टेथोस्कोप लगाया, स्टेथोस्कोप लगा के कान से सुन रहे थे पेट का स्टेटस, उसकी आवाज कैसे आ रही है पेट में से। तो महाराज देखिए उसके कुछ ही दिनों बाद महाराज शरीर छोड़ रहे हैं, और महाराज उस अवस्था में मजाक कर रहे हैं, महाराज इतना जोक करते थे, कई बार उस अवस्था में महाराज बोलते थे डिसाइपल को जाओ मेरे लिए आइसक्रीम लेके आओ, महाराज आइसक्रीम किया अभी तो आप पानी भी नहीं पी सकते इस अवस्था में आइसक्रीम खाएंगे, तो ऐसे से मजाक करते थे श्रीधर महाराज। तो महाराज कहते डॉक्टर से इज इज अ बॉय और अ गर्ल, महाराज बोल रहे डॉक्टर से बोल रहे उनका पेट पूरा फूला हुआ, ऐसे पेट फूल गया था, लिवर में पानी भरने के कारण पेट ऐसे सारा फूला हुआ था महाराज। महाराज कहते इज अ बॉय और अ गर्ल। तो कहने का मतलब है ये है वास्तव में फियरलेसनेस, निर्भीक होना, बिल्कुल भी भय नहीं है, यानी कि देहात्मक चेतना से बिल्कुल ऊपर उठ गए। प्रैक्टिकली हमने देखा, आंखों से देखा हमने इन भक्तों को, और आज भी देख रहे हैं हम लोग। तो ये सब उदाहरण होने के बावजूद भी जो है हमारी आंखें नहीं खुली हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हमारी समस्या है, ये उनकी समस्या नहीं है। तो सब कुछ उपलब्ध है हमारे पास, गुरु भी है, साधु भी है, शास्त्र भी है, ये सब प्रमाण भी है, और इसका पूरा हमें लाभ उठाना चाहिए, इसके बारे में श्रवण करके, इसका कीर्तन करके। तो कष्ट कई प्रकार के आएंगे, हमें लगे रहना है, जो प्रोसेस दिया है प्रभुपाद जी ने उसको फॉलो करना है, उसको पूरा विश्वास होना चाहिए, पूरा फेथ होना चाहिए, हमें धैर्य रखना होगा कि हाँ कृष्ण हमारी अवश्य रक्षा करेंगे अगर हम लगे रहेंगे, तो कोई इसमें समस्या नहीं। हरे कृष्ण।